मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 28 जुलाई 2017 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में भी जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वह इनफैक्ट कल के ही विषय का विस्तार है और आपको याद होगा, मालूम ही है कि कल हम लोग बात कर रहे थे विचारों के बदलाव पर कि किस तरीके से विचारों का बदलाव की प्रक्रिया होती है, क्यों होनी चाहिए। इन पर हम लोगों ने कुछ ये कह लीजिए कि परिचयात्मक बात की है। आज हम उसी विषय को और बात करके आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों एक बात तो ये मानकर चलिए कि आप मैं कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। जो जिस स्थिति में है उससे कहीं न कहीं असंतुष्ट है या पूरी तरह से परफेक्ट स्थिति में नहीं है, यदि वो बहुत प्योरली आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहा हो तो हर कोई बदलना चाहता है। और ये अच्छी बात है क्योंकि चाहे वो समाज हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे व्यक्ति का अपना जीवन हो, राष्ट्र हो, दुनिया हो, उसमें जो हमें विकास दिखाई देता है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बदलने के अंदर एक इच्छा रहती है। तो इच्छा तो रहती है लेकिन फिर इच्छा रहने के बाद वो कौन सी ताकत है जो इस इच्छा के रास्ते में रोड़ा बनती है। रोड़ा ही नहीं बनती है बल्कि दीवाल बनकर खड़ी हो जाती है। रोड़ा को तो हम लांग सकते हैं, अगर दीवाल बहुत ऊंची हो तो उसे तोड़ना या लांगना फांदना बड़ा मुश्किल होता है। हमें मित्रों यह जानना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो हमें एक आंतरिक शक्ति की जरूरत है, अंदर जो एक ऊर्जा की प्रबलता चाहिए, धधकती हुई ज्वाला चाहिए, वो कहां से लाएं। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि वो हम ला सकते हैं सिर्फ यह सोचकर कि जो मैं करना चाह रहा हूं उससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। देखिए बदलाव के मामले में हम थोड़े से आशंकित भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक शहर बदल के किसी दूसरे शहर में जाना चाह रहा हूं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना चाह रहा हूं, यह भी एक तरीके का बदलाव ही है अगर हम सतही स्तर पर देखें तो। लेकिन मैं थोड़ा सा आशंकित रहता हूं कि पता नहीं वहां कुछ सही होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इससे भी चले जाएंगे। हम नौकरियां बदलते हैं तो डर लगता है कि यहां चलो ये तो ठीक ठाक है, उम्मीद से तो जाते हैं कि वहां कुछ बेहतर होगा लेकिन पता लगा कि और भी बदतर हो गया, तो हमारे मन में एक आशंका रहती है। और ये जो आशंका का घुन है, कह लीजिए ये आशंका का घुन हमारे अंदर की जो बदलाव की प्रबलता है उसको कहीं ना कहीं धीमा कर देता है। और अगर जरा सा भी वो धीमा हुआ तो मान करके चलिए कि अब हम बदलाव के रास्ते पर आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। धीरे धीरे पहले तो कदम धीमे धीमे होंगे, इसके बाद फिर थम जाएंगे, फिर या तो थमे ही रहेंगे या फिर वापस लौटना शुरू हो जाएगा, यही होता है। तो वो कौन सा थॉट हम अपने दिमाग में लाएं कि जो हमारे इस अंदर की आग को लगातार धधकाता रहे, उसको फूंक मारता रहे, उसके सामने पंखा झलता रहे ताकि वो जो अंगार हैं वो बुझने ना पाए, अंगार जलकर राख में तब्दील ना होने पाए, लगातार धधकते रहे। फिर से ये बात मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं और वह बात हो सकती है, एक बात जो मुझे लगता है कि अगर हम सब अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाह रहे हैं और हर कोई अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाहता है, अब वो बड़ा जीवन की परिभाषा क्या है कि किस जीवन को बड़ा जीवन कहते हैं वो एक अलग बात है, कि कोई पैसे को बड़ा मान करके पैसे कमाने में लगा हुआ है, कोई समाज की सेवा करके उसमें लगा हुआ है, कोई राजनीतिक पद या ब्यूरोक्रेटिक पद पाने में लगा हुआ है, अब वो एक अलग बात है। लेकिन हम सब बड़ी अपनी अपनी जिंदगियों को बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ी जिंदगी जीना चाहते हैं और हमको ये मानकर चलना चाहिए कि सच्चा जो बड़ापन है, जो बड़ी जिंदगी की जो परिभाषा है वो बिना बड़ी सोच के नहीं आ सकती। बड़ी सोच ही जिंदगी को बड़ा रूप दे सकती है। और अगर हमको इस सिद्धांत पर विश्वास हो जाता है, हमारा विश्वास बहुत ही दृढ़ हो जाता है, बिल्कुल चट्टानी हो जाता है, तब फिर हमें यह लगने लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बदलाव ला सका अपने अंदर तो डेफिनेटली मेरी जो आगे की जिंदगी होगी वो बड़ी जिंदगी हो गई। और याद रखिए कि अगर आपकी जिंदगी बड़ी है तो वह बेहतर ही होगी, बड़ी जिंदगी कभी बदतर नहीं होती है। क्योंकि उस बेहतरी में अपने आप में इतनी ज्यादा सहन शक्ति होती है, इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वो बाहरी किसी भी दबाव को, तनाव को, परेशानियों को, बाधाओं को बड़े आराम से झेल लेती है। उसमें इतनी लोच होती है, अगर किसी चीज में आंतरिक लोच हो जाए तो आप ऊपर से कितना भी दबाव डालिए, कितना भी बोझ डालिए, देखिए कि वो उसे बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि झटके सहने की उसको आदत है। और इनफैक्ट सच बात यह है, सहना तो एक अलग बात है कि उसको जब झटका लगेगा तो उस झटके का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि झटका को बर्दाश्त करने वाली जो स्पंज है, शुरू में जो लगी हुई स्प्रिंग्स लगी हुई है, वो उस झटके को बर्दाश्त कर लेंगी, हम तक वो झटका पहुंचेगा ही नहीं। ये बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो दोस्तों, पहला मंत्र इसका यही है कि आप ये मान करके चलिए कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो जिंदगी निश्चित रूप से बड़ी होगी, बावजूद इसके कि भौतिक स्तर पर जो हम पाना चाह रहे हैं उन्हें पा पाते हैं या नहीं, राइट? इसके बाद आता है दोस्तों कि हम उसके लिए कौन सा पैटर्न अपनाएं। कल मैंने तीन पैटर्न की आपसे बात की थी, याद करने की कोशिश कीजिए। पहला तो यह है कि सुधारवादी रुख, यानी कि हमारा जो पहले अभी की जो हमारी सोच है उसमें हम थोड़ा सा सुधार लाएं। दूसरा है कि हम इसे ध्वस्त कर दें और फिर आगे के लिए कोई सकारात्मक हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो सबसे गड़बड़ बात है। और तीसरा यह है कि हम इसे ध्वस्त कर दें और फिर आगे हम नया सोचें, लेकिन जमीन वही हो जो हमारी पुरानी जमीन है, जिसे मैं संस्कार कहना चाहूंगा, अपने यहां की संस्कृति कहना चाहूंगा, मैं परंपराओं का विरोधी नहीं हूं, परंपराएं कहना चाहूंगा, ये सारी बातें आप ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, यहां जो सबसे बड़ी बात है, जब मैं परंपराओं की बात कहता हूं, दर्शन की बात करता हूं, जीवन प्रणाली की बात करता हूं, सामाजिक संरचना की बात करता हूं, तो उसमें एक तथ्य छिपा रहता है। मुझे नहीं मालूम कि आप सब में उससे कितना एग्री करेंगे, और वो ये कि ये सुसाद जो परंपराएं हैं ये रूढ़ नहीं होती हैं, ये मृत नहीं होती हैं, ये पुनर्जीवित होती रहती हैं, ये बहती हुई नदियों की तरह होती है। नदियां हजारों साल पुरानी हैं लेकिन उसका पानी पुराना नहीं है, उसका पानी नया है। तालाब का पानी पुराना हो सकता है, पोखर का पानी पुराना हो सकता है, और यदि उसमें पानी पुराना होगा तो पानी से दुर्गंध आने लगेगी, तो उस अगर तालाब को बने रहना है, पोखरों को बने रहना है, झील को बने रहना है, तो बहुत जरूरी है कि वो पुराने पानी से मुक्ति पाएं और नया पानी अपने अंदर भरें। परंपराएं भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं, ये फ्लोइंग रिवर की तरह है, बहते हुए जल की तरह है। तो अगर हम बहते हुए जल के सिद्धांत को इस पर लागू करें तो बहुत जरूरी होता है कि जिस जमीन की मैंने बात की है, जिस जमीन पर हमें अपने नए विचारों की इमारत खड़ी करनी है, डेफिनेटली हमें उसे तर्क की कसौटी पर कस के देखना होगा। आप किसी भी परंपरा को उठा लीजिए, किसी भी परंपरा, इस पर मैंने बहुत काम किया है मित्र, बहुत सोचा है, बहुत अध्ययन भी किया है, चाहे वो परंपरा हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो विश्वास हो, यहां तक कि आज जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, हाँ यस, अंधविश्वास कहते हैं। जैसे पहले के लोग हमारे कहते थे कि पूर्व, इस दिन पूर्व दिशा में यात्रा करनी चाहिए, इस दिन पश्चिम में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये उस समय कहते थे। तो आज अगर ये बात कही जाए तो लगेगा कि अंधविश्वास है। छींक जब आपको आ जाए तो घर से नहीं निकलना चाहिए कि वो कुछ अशुभ घटित हो सकता है। आज जब हम ये बात करेंगे तो ये बात हमें पूरी तरह से अंधविश्वास लगेगी। लेकिन याद रखिए कि जब इनका विधान किया गया था, इन्हें स्वीकार किया गया था और समाज को बताया गया था कि आपको ऐसा करना है, उस समय ये अंधविश्वास नहीं थे। ये बहुत मजेदार बात है, उस समय के लोगों ने बिल्कुल तार्किक आधार पर इनके बारे में सोचा था और वो तर्कयुक्त थे और उनके परिणाम सामने आते थे। आज भी अगर हम बदले हुए समय में उन्हीं को लेकर चलें तो फिर वो अंधविश्वास हो जाएगा, फिर वो परंपराओं का एक निर्जीव पालन करना होगा, या यूं कह लीजिए कि निर्जीव परंपराओं का अंधा होकर पालन करना होगा। देखिए, छींक आ रही है, उस समय मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, लोगों को पैदल कई कई दिन तक यात्रा करनी पड़ती थी, तो छींक को ये मान करके चलते थे कि ये किसी बीमारी का लक्षण है, तो भैया घर पर रुक जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि रास्ते में बीमार पड़ गए तो क्या होगा। और आज तो कुछ नहीं, आप अपने थैली में दवाई डाल करके चलिए, बीमार पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास थैले में दवाइयां हैं, ज्यादा बीमार पड़ गए तो जगह जगह अस्पताल है, तो वो है ना। तो आज छींक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस समय इंपॉर्टेंट थी। तो इस तरीके से जो भी हमारे अपने विचार जो हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमारे विकास में बाधक बने हुए हैं, जो दूसरों के साथ संबंध बेहतर बनाने में से हमें रोक रहे हैं, जो हमें संकीर्ण बना रहे हैं, नैरो कर रहे हैं, जो हमें छोटे बना रहे हैं, हमें ऐसे सारे विचारों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। लॉजिकली तरीके से हम उन्हें सोचें कि आज के संदर्भ में कितने सही हैं, और फिर ये भी सोचें कि मेरे संदर्भ में ये कितना सही है। मित्रों, जिन प्रोफेसर एसपाल का जिनका निधन हुआ है 2 दिन पहले, जिनको आप हम सब ने अपनी श्रद्धांजलियां भी दी हैं, अखबारों में आपने उनके बारे में पढ़ा भी है, मैंने आपको बताया था कि कैसे वो विज्ञान की छोटी छोटी चीजों के बारे में युवाओं को समझाते रहते थे। उसके पीछे कारण यही था कि वो ये मानकर चलते थे, जो सही भी था, कि अगर छोटे छोटे बच्चे अभी से विज्ञान को समझ लेंगे तो उनकी जो चेतना है वो वैज्ञानिक हो जाएगी, तार्किक हो जाएगी, फिर वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस के देखेंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स कि इस तर्क का कोई विरोध भावनाओं से नहीं है, क्योंकि भावनाओं को अभी अपना तर्क शास्त्र होता है, भावनाओं के भी अपने तर्क होते हैं, क्योंकि भावनाएं यथार्थ हैं, वो झूठी नहीं है, वो बेकार की नहीं है, उनका भी अपना यथार्थ है, उनकी अपनी रियलिटी है, उसे तो हम जीते हैं और वह हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन संकट वहां होता है कि जहां हमें प्लेन से सफर करना चाहिए वहां हम घोड़े पर बैठ के सफर कर रहे हैं, और जहां घोड़े पर बैठ के सफर करना चाहिए वहां हम अनावश्यक रूप से प्लेन की सवारी कर रहे हैं। दिक्कत वहां होती, जहां तर्क की जरूरत है वहां हम भावनाओं को ले आते हैं, और जहां भावनाओं की जरूरत है वहां हम तर्क को ले आते हैं। तो संकट ये है, संकट इस बात का नहीं है कि भावनाएं होनी ही नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर यशपाल जैसे लोगों ने जो अपना पूरा जीवन इस तरह के कामों के लिए समर्पित कर दिया, वो इसी उद्देश्य से था कि हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा तार्किक बने। अगर वो तार्किक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से वो अपने व्यवहार, विचार, परंपराएं, रूढ़ी, अंधविश्वास, यहां तक कि धर्म, इन सबको तर्क की कसौटी पर कसेंगे। और जब तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो फालतू की चीजों को ड्रॉप कर देंगे, नई चीजों को अपनाएंगे, इससे उनके विचारों में बदलाव आता चला जाएगा। अगर विचारों में बदलाव आता चला जाएगा तो सोच बड़ी होती चली जाएगी, और अगर सोच बड़ी होती चली गई तो जिंदगी अपने आप बड़ा रूप धारण कर लेगी। ये उनके पीछे उद्देश्य था। तो दोस्तों, मैंने यहां कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बताए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब यदि इन्हें उपयोग में लाएंगे तो अपने अंदर एक बहुत ही सुकून महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। और यदि आप ऐसा महसूस करने लगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आध्यात्मिक जीवन का जो दरवाजा है, जो द्वार है, वो खुलना शुरू हो गया है। तो मित्रों, इस विषय पर बस इतना ही, और जैसा कि मैंने कहा था कि आज शुक्रवार है तो कल और परसों मैं आप सबको मिस करूंगा, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकेगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, किसी और नए विषय पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबकी इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।